ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
आत्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने तीन मंत्र पढ़ लिए। इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव, वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है, कबीर देव, और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो, कबीर देव अमर पुरुष होता है। और उसके द्वारा बोली गई वह अमर वाणी, उनके द्वारा बनाई गई वह लोकयुक्तियां अमर वाणी की, उनके शिष्यों ऋषि मना साधु संत भक्तों के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर होती हैं, प्रिय होती हैं। और वो परमात्मा तीसरे लोक में विराजमान है। और देखो फिर आगे 19 में और 20 में और कमाल कर रखा है। अपने आत्मा कहते सच्चाई को कुछ दिन दबा तो सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 आपने पढ़ लिया कि वो तीसरे धाम में विराजमान है। बस अब 19 में देखो कमाल है। वह चौथा परम पद परमात्मा है। अभी इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया। यहां लिखता है महापुरुष उक्त चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब ये नहीं होगा भगवान एक है, अनेक नहीं। और यहां लिख रखा है कि चौथे परमात्मा तुरिया माने चौथा। यहां इन अनुवाद में भी तुरिया लिख दिया, चौथा ना लिखा, कदे थारी बात का खंडन हो जाए, अक्षर पता लग जाए, तुरिया लिख दिया। वो चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है। अब यहां लिखा है इस मूल संस्कृत में ये समुद्रम तुरियम धाम। समुद्र माने जैसे समुद्र सब जल का स्रोत होता है, ऐसे सब का उप स्रोत परमात्मा रूपी समुद्र, उस परमात्मा में से जो तुरिय धाम और चौथे धाम में विराजमान, यो अकै लोक की तरफ संकेत है। सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और चौथा है ये अकै लोक। वो समुद्र रूप यानी जहां से पर सभी का निकास हुआ है, वो अकै लोक के अंदर वो अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा चौथे धाम में रहता है। और वो चौथा भगवान सच्चाई को मिटा नहीं जा सकता, ये छुप भी नहीं, इनसे दब भी नहीं पा रही। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है समुद्र का अर्थ इन्होंने कहा है कि जिससे सब भूतों की उत्पत्ति सतीथि और परलय होता है वह है तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है, धाम माने चौथा धाम है। और फिर ये खुद कह रहे हैं कि उक्त महापुरुष उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब चौथा परमात्मा भी है और चौथा धाम भी है, वास्तविकता तो ये है, स्पष्ट हो रही सारी कहानी। जो सर्वशक्तिमान यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी वो चल के आता है शीघ्र गति, एक अगर सर्वव्यापक है तो पहले ही वहां विद्यमान है, फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी भगवान की, और सबका संसार का उत्पादक है। तो यहां ये बात स्पष्ट होगी। अब इन्होंने एक और स्पष्ट किया है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 और इसका मंत्र नंबर 5 नीचे है। हे परमात्मन आप समुद्र रूप हैं, ये देखो आप समुद्र रूप हैं, या इन्होंने इसका विवरण किया है सज्ञम समग्य दर्वंती आपो यस्मात् से समुद्र, जिसकी शक्ति से जल आदि सब पदार्थ सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं उसका नाम समुद्र है। इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है, आ गया ना, इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है। तो यहां ये समुद्र शब्द है, इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 19 में समुद्रम तुरियम धामम, वो चौथे धाम में और चौथा भगवान समुद्र माने परमात्मा, यहां कोड वर्ड है, यो अलंकार है इसमें, तो परमात्मा जैसे सबका समुद्र से सबका निकास होता है, ऐसे उस सबका निकास जहां से हुआ वो चौथे धाम में विराजमान है। अपने आत्माओं सच्चाई ऐसे प्रकट हो रही है अब, जैसे समुद्र जाल मार के मोती बार फेंक दिया करे, कबीर परमेश्वर ने जाल मार दी, हमारे लिए ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया। अब प्रकृति के सूक्ष्म रूप शक्तियों के साथ जो संगत करता है समुद्र का अर्थ है, वो समुद्र वह परमात्मा जिससे सब का निकास हुआ है वह तुरियम धामम चौथे धाम में विराजमान है, वो चौथे धाम में है, वहां रहता है और वो चौथा ही भगवान है। ये देखो महापुरुष उक्त तुरिय माने चौथे, ये तुरिय माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता है, यानी जो सही संत होगा वो बतावेगा चौथे और सब भगवानों के बारे में। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वोपरि सबसे ऊपर है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों भक्तों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है। अब 20 में फिर देखो, ओह कमाल कर रखे 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यानी वहां से चलकर आता है कहीं से वो परमात्मा, गरजता हुआ आता है जैसे मरिय माने मनुष्य, जैसे मरिय मनुष्य मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, यानी अन्य और तेजों में हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर मनुष्य की तरह शरीर धारण कर, जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है ऐसे वो परमात्मा हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर धारण करता, अलग से अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ और यहां आता है। धनानाम यानी जो भक्ति के धनी है श्रेष्ठ आत्मा उनको मिलता है। या देखो 21 में, हे प्रकाश रूप महापुरुषों से उपासना उपासमान आप हमको पवित्र करें और वैदिक कनी कर देते, यानी वाणियों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्राप्ति प्राप्त श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त होते हो, यानी कहीं देख ले वहीं पर सारा रूप से परमात्मा, पूर्ण रूप से परमात्मा की महिमा बही पड़ी है। अपुण्यात्मा, परमात्मा ने आप जी को पहले तो शिक्षित किया, ना शिक्षा की कति जरूरत ना थी, इस शिक्षा ने हमारे को बेईमान बना दिया। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग अशिक्षित थे, आपस में प्यार था, छल कपट नहीं था, न गणी माया की दो ओड़ थी। इस शिक्षा से हमें अवगुण तो अधिक हैं, लेकिन एक गुण इसमें बहुत ही श्रेष्ठ है जो सब अवगुणों का नाश करेगा। सबसे बड़ा गुण है कि हम भगवान को पहचानने के, न इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता क्या है। आप उदाहरण देख लो, परमात्मा ने भी बहुत से उदाहरण दिए हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी फिर दम के पड़े तजीरम। यहां देख ले पृथ्वीपति, बड़े बड़े पूंजीपति, फैक्ट्री कंपनियों के मालिक, फैक्ट्रीपति हैं, अपने हेलीकॉप्टरों में दबकर मर जाते हैं, और सारे जीवन में माया जोड़ जोड़ जोड़ने के लिए होकंड क्रोक कोई भी साधन अपनाना पड़े पीछे नहीं हटते, और वह माया दरिद्राई रह जाती है। यदि मनुष्य जीवन का कोई मूल उद्देश्य है कोई, केवल परमात्मा पाना और कल्याण करवाना, जहां से हम आए हैं, जहां कभी मृत्यु नहीं होती, और वहां ऐसा ही जन्म होगा, ऐसी सृष्टि होगी एक बार फिर, कभी मृत्यु नहीं, कभी कोई रोग नहीं शरीर में, वृद्ध अवस्था नहीं आवेगी, वहां जाएंगे तब हमें सुख होगा, उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। बाकी तो ये कर्म पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं, जो भक्ति से दूर प्राणी करता है, वहां से कागज के नोट बैंक में डाल दिए हैं कि तो 5-4 प्लाट ले लिए, आप मृत्यु होगी, आप तो कीड़ी बनकर कि तो बिल में घुस गया, और प्लाटा ने शर्मा मार ले, सारी उम्र खो दी उसके उन प्लाट तोड़ने में, कोठी बनाने में। तो ये अगर मूल उद्देश्य इस जीवन का है, परमात्मा पाना है, और आज ये विद्या अक्षर ज्ञान हमें इसका सहयोगी हो गया कि हम भगवान पहचान लेंगे। और इतने कठिन है इस दास के लिए, इतनी कठिनाई आ रही है, जब तक आप इस बात को समझ नहीं पाते, दास कहना के चाह रहे हैं। और ये भ्रमित करने वाले जो स्वार्थी संत कहलाते हैं अपने आप को, नकली, वो आपको भ्रमित करते हैं। ये दास यथार्थ ज्ञान बताने वाला एक, और वो भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों, फिर भी इस सत्य के अंदर इतनी शक्ति है कि ये जबरदस्ती ऊपर आ रही है और अपने परमात्मा के बच्चों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। अब प्रसंग जो चल रहा है कि वो परमात्मा, वो सत्यनारायण कथा हम आपको सुना रहे हैं। वो सत्यनारायण क्या लीला करता है, वो कहां रहता है, उसकी महिमा लिखी कहां, वेदों में लिखी है, हम सभी सुनते थे, पहले भी कहते थे। तो अब उस परमेश्वर ने वेदों में भी क्लियर कर दिया, गीता में भी स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता ने, वेद ज्ञानदाता ने, कि उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में, सचिदानंद घन ब्रह्म के बारे में, सचिदानंद घन ब्रह्म की ही वाणी में विस्तार से कहा गया है। उस कबीर वाणी में जो लिखा है, उस तत्वदर्शी संत ही जानता है, उससे सुनो। और यो संत दास आपके समक्ष परमात्मा ने प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब आपकी कमी रहेगी, जब नहीं समझोगे तो भगवान का दोष रहा नहीं। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, 10-5 मिनट का सत्संग और है। वो कैसा है भगवान, और क्या नाम है उसका, वो कहाँ रहता है, ये वैसे तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 21 तक कति स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है, कबीर है, और वो तीसरे धाम में रहता है, और फिर वो चौथा परमात्मा और चौथे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, इन वेदों से सच्चाई सामने आ रही है, परमात्मा ने स्वयं बता रखा है कि ऊपर सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय लोक है, और ऐसे ही चार परमात्मा ऊपर है, वो अविनाशी है। परमात्मा तो एक ही है, वो रूप अनेक बनाए हुए है बस, और ऊपर के लोकों में रहता है। ऊपर के लोकों में एक तो चौथे धाम में सतलोक में, एक तो ये काल का लोक, ब्रह्म का लोक, दूसरा परब्रह्म का लोक, और तीसरा जो धाम है, तीसरे धाम में सतलोक। उस सतलोक में भी रहता सतपुरुष रूप में, उस सतपुरुष परमात्मा जो सतपुरुष रूप में सतलोक में, वही गति करके नीचे आता है और वहां भी विद्यमान रहता है। उससे ऊपर भी तीन रूप और है उस परमात्मा के, वो वेद भी आज स्पष्ट कर रहे हैं। अब वही आपके समक्ष आए कि वो चौथे धाम में चौथा परमात्मा और तुरियन धाम में तीसरे धाम में भी वो परमात्मा रहता है। अब ऊपर से सतलोक से फिर चौथा धाम है और चौथा ही भगवान है वो। सतपुरुष एक, अलख पुरुष दो, अगम पुरुष तीन और अकय पुरुष वो चौथा वो स्थान है, वो धाम जहां से सबका निकास हुआ है। वेद बता रहे हैं वो समुद्र रूप भगवान है। अब फिर हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के। ये वही ऋग्वेद है, इसके वही प्रकाशक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले यजमानों माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके दुखों का नाश करता है जो जीवन रूपी सफर में रास्ते में आते हैं, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साकार परमात्मा है अपना हल्का रूप बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, वह कांति में कबीर देव कबीर साहब कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ श्रेष्ठ पुरुष को अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में कहा है वह है जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, दिव तृतीय पृष्ठे तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी स्थान पर विराजमान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का और मंत्र नंबर 1। ये यहां से प्रारंभ होता है एक, जो सर्वोत्पादक यानी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा है वह प्रकाश रूप है यानी तेजो में रूप युक्त है, उसका रूप है प्रकाश तेजो में रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों के हरण करने वाला। दानंद का यो विधान भी फेल हो गया कि भगवान पाप नाश नहीं करता, पापों का हरण करने वाला राजेव राजेव राजा के समान। ये देखो ये है 269 पृष्ठ पे और 270 पे इसका अनुवाद है राजेव राजा के समान 270 पे एक नंबर राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है वह परमात्मा और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर सद्यमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को श्रेष्ठ भक्त को श्रेष्ठ व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि उस दृढ़ भगत को क्यों मिलता है? श्रेष्ठ भक्ति को भगत को जैसे जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे काशी एक धातु होती है, काशी की थाली बेले हुआ करते पहले और वर्षा के दिनों में उनको विशेषकर अंदर खवाती थी हमारी दादी के, बिजली काशी धातु का ऊपर गिरती है अमूमन, तो वो वहां गिरने का अट्रैक्शन है उसका, इसलिए उसी पर गिरेगी। तो ये वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको ही पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें ही उसका अट्रैक्शन होता है, वो भगवान के ज्ञान को सुनने योग्य होता है। जैसे जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को काशी धातु को समझ ले आधार बनाकर उस पर गिरती है, वह ऐसे ही वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, जैसे धर्मदास जी को मिला, नानक साहेब जी को मिला, गरीबदास साहेब जी को मिला, दादू साहेब जी को मिले, वो अच्छी आत्माएं थी, दृढ़ भक्त थे और उन्हें ढूंढा ढा दिया गया, फिर सारे ढिंढोरा पीट दिया। अब देखो दो, हे परमात्मन, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र दो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान। यदि परमात्मा एक देशीय नहीं है और सर्वव्यापक, फिर गति करने की क्या जरूरत है सर्वव्यापक को? अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं आप, या कबीर देव हैं, जैसे यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा है, ऐसे ही कबीर का अर्थ यहां पर हमने कबीर देव लिखना पड़ेगा। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप है, बस हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मने अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं ये स्पष्ट होने लग रहा है वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव है, और उपदेश करने की इच्छा से वो वहां से चलकर अपने तीसरे धाम सतलोक से गति करके सहसरी आता है, और वो कबीर देव, उसका नाम कबीर देव है। अब आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप है, सर्वव्यापक ने ये गलत लिखा, आप है माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हो। ये बंदी छोड़, हे मेरे मालिक, कितनी सच्चाई भरी है इनमें अपने सदग्रंथों में। अब आपको और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 के 56 और 57 में, यानी सैकड़ों जगह ये प्रमाण है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 का, ये छप्पन वहां है मंत्र। उक्त परमात्मा जिसके बारे में पहले कहा गया सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ है, सबको पवित्र करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का प्रेरक है, वह है सर्वो उत्पादक परमात्मा, संपूर्ण लोकों का प्रकाशक है, वह है प्रकाश रूप परमात्मा, वह तेजो में शरीर युक्त परमात्मा, ज्ञान यज्ञों में ज्ञानों की प्रेरणा करता हुआ रक्षा योग वर्णीय पुरुष को अति सहनहित सनहित प्राप्त होता, बिल्कुल साथ में, यानी बिल्कुल उनका संग करता है। फिर 57 में प्रकाश रूप परमात्मा को दृढ़ प्रतिज्ञा वाले जो सद्गुणों के प्रभाव से महापुरुष हैं, वे प्राप्त होते हैं। निष्काम कर्मी विद्वान ज्ञान रूपी यज्ञ की वेदी में जो शब्दायमान होते हैं, धीर लोग यानी तत्वदर्शी संत 10 प्राणों की गति से सत्कर्मों के परिपाक से उक्त परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार करते हैं। फिर निराकार की तरह गया, 100 जगह लिख रखा है वो साकार है, साक्षात्कार करते। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 98 का यो तीसरे मंत्र में, इसमें लिखा है वह प्रकाश रूप परमात्मा जो आनंद में है, वह रक्षा योग कर सत्कर्मी पुरुष के अंतःकरण में अपना ज्ञान प्रभाव बहाता है, यानी उसको ज्ञान देता है। वह स्वरूप ऊर्ध्व माने ऊपर विराजमान है, वह ऊर्ध्व माने सरोपरी विराजमान परमात्मा है, वह सबसे ऊपर सतलोक में बैठा है। ठीक है अपन आत्माओं, ये है वह सत्यनारायण कथा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसके जानने के बाद और सारे जातन ज्ञान को समझने के उपरांत परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद भक्त फिर यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बड़ा दोष था, क्योंकि इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा दुख में जीवन, दुख में समय जो है वृद्ध अवस्था होती है, और मरण सबसे गुंडा मरण, मृत्यु। देखो आपके बालक हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, धन है, कार है, कोठी है, पर एक मिनट में मृत्यु हो जा। आप चाहते हैं कि मृत्यु ना हो, आखिरी सांस तक चाहते हैं मृत्यु ना हो, या कंपलसरी? तो जब ज्ञान हो जाएगा इस मृत्यु को तो हम भूल जाएंगे, ये तो एक बार तो होगी लेकिन फिर कभी नहीं मरेंगे हम, ऐसे लोक में चले जाएंगे जहां जरा और मरण नहीं है, न वृद्धावस्था है और न वहां मृत्यु है। तो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तत्परम विदुः, वो उस परमात्मा से परिचित है जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते। तो आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा वो किम तत्परम, गीता ज्ञान दाता ने आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तो अन्य पंद्रहवें अध्याय के सत्तरवें श्लोक में, अब उससे लिंक हो गया व्यू, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कौन से अक्षर पुरुष, अब वो अक्षर ब्रह्म विनाशवान, ये परम अक्षर ब्रह्म है वो कौन है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, तो तीसरे लोक में रहता है और वहां से चलकर गति करके यहां आता है, जो बनारस में काशी शहर में एक धानक की भूमिका करके 120 वर्ष रह के और तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सह श्री राय थे सह श्री चले गए, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्यनारायण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आप आरती, आप साजय, आप किंगर, आप बाजय, आप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखण हारा। परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म हम सभी प्राणियों का पिता है, वो कुल मालिक है, वो सचखंड में रहता है, उसका नर आकार है, मनुष्य सदृश शरीर है, वो परमात्मा वहां से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए आता है। और काल भगवान ने जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, वो काल है, ज्योति निरंजन भी उसको कहते हैं, सर्वपुरुष भी वो कहलाता है, सर्वपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी सर्वपुरुष के, इस काल रूपी ब्रह्म के पुत्र हैं। दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, और इन सभी ने मिलकर हम परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को यहां काल के जाल में फंसा रखा है। परमेश्वर कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर देव जी, कबीर साहब जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए आते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें परमात्मा की भक्ति का एक विधान बनाकर दिया था, इस काल को, इस ब्रह्म को, सर्व पुरुष को, ये पांचों वेद दिए थे प्रभु ने, परमेश्वर ने, कि तू इन मेरी प्यारी आत्माओं को ये भक्ति विधि बता देना। इसने क्या हेराफेरी की हमारे साथ, कैसा धोखा किया। इस काल भगवान ने चार वेद हमारे को दे दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और अथर्ववेद। सूक्ष्म वेद छुपा दिया, जिसके अंदर पूर्ण परमेश्वर के पाने की, उस परमेश्वर की पूरी पहचान, उसके मंत्र की विधि, जाप की विधि उसमें विद्यमान थी। आज आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्म ने मुखे, बहुत ही विस्तार के साथ सत्साधनाओं का वर्णन है और उनके जानने के उपरांत आप सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। वो तत्व ज्ञान है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 1 से 20 तक 21 तक देखा पढ़ा, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और वो कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, कविताओं से वो सुनाता है। और वो अमर परमात्मा कबीर देव है। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी कबीर वाणी के बारे में कहा है कि उस ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे माने उनके मुखारविंद से उच्चारित उस ज्ञान में कबीर वाणी में विस्तार से कहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और वो तुझे उस अमर परमेश्वर की, सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण की कथा सुनावेंगे, यथार्थ ज्ञान देंगे। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में यथार्थ ज्ञान है, वो उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। वो काल भगवान ने, ब्रह्म ने गुप्त कर दिया, छुपा दिया। उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर यहां काल के लोक में आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए। अब काल भगवान ने क्या किया है कि सब उल्टा ज्ञान अपने दूतों यानी संदेश वाहकों द्वारा उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दिया। चारों वेदों में वर्णित विधि से, वैसे 3 वेद भक्ति के हैं, अथर्ववेद जो है इसमें विज्ञान कांड ज्यादा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों में जो भक्ति की विधि वर्णित है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तो समर किल्वे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मान के साधना कीजिए। तो भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर छोड़कर जागा, शरीर का अंत होगा, तब वो अमृतो प्राप्त होगा तुझे जो ओम नाम से प्राप्त हो सकता है। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मा मनुसमरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो शरीर त्याग कर जाता हुआ इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम नाम से मिलने वाला जो लाभ है उसको प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है परमात्मा आप तो इन सिद्धों को भी खा रहे हो, आप इन देवताओं को भी खा रहे हैं, ऋषियों के समुदाय आपके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं कि मंगल हो बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए अब परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे क्योंकि वो तो पहले महाराज उसके साथ थे, उनका रिलेटिव थे अर्जुन के। वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसने गीता बोल दी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है कि हे सहस्राबाहु यानी 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आओ, क्योंकि श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण तो विष्णु अवतार थे और विष्णु जी का रूप उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का देख रखा था अर्जुन ने, अर्जुन कहता है भगवान आप इस जब काल ने अपना रूप दिखा, 1000 हाथ 1000 मुंह 1000 ऐसे नेत्र गने, तो तब कहा कि हे सहस्राबाहु 1000 भुजा वाले प्रभु आप उसी चतुर्भुज रूप में आओ। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा जो वास्तविक रूप ये है, मैं काल हूं और मेरी प्राप्ति मेरे इस रूप के दर्शन जो मेरा ओरिजिनल रूप है, यहां का जो भगवान ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के विषय में कहा कि मेरे दर्शन ये जो मैंने तुझे अब दर्शन दिए हैं, ये दर्शन मेरा साक्षात्कार न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न किसी क्रिया से बिल्कुल संभव नहीं। इति सिद्धम पुण्यात्माओं, इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, उससे अन्य लाभ हो जाता है, जैसे हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं, ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में हैं, यानी सब ब्रह्मलोक तक पहुंचे हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, पहले भी हुए हम आगे भी होंगे, ये ना सोच के हम वर्तमान वर्तमान में। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है कि मेरे जन्म को ऋषि देवता नहीं जानते, क्योंकि इन सब का जन्म मेरे से ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति से परिचित नहीं है, क्योंकि ये इनके पुत्र हैं। अब जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देगा, तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इन सब की जन्मपत्री अलग अलग खोल कर बता दी। आप सृष्टि रचना में सुनते हो, पुस्तक में बना रखी है, उसमें पढ़ते हो, तो उस परमेश्वर ने आकर के इन सब की जन्म और मृत्यु सचिथि और इनकी सामर्थ्य हमें बताया, हमें ज्ञान दिया परमात्मा ने। तो कहने का भाव यह है कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, सिद्धियां आ गई, एटम बम बन गए और फिर ब्रह्मलोक तक जाकर फिर वापस अपने पुण्यों को अक्षीण करके 84 लाख योनियों में, पशु योनियों में, पक्षी योनियों में भटकते रहे। ये यहां का अटल विधान है। जब तक हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वर्णित उस मंत्र ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ओम डायरेक्ट है ब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है, ये दास बताएगा। और दास के अतिरिक्त इन मंत्रों का दान करना भी किसी को अधिकार नहीं है, ये दास ही उनको दे सकता है, ये परमात्मा का आदेश है। और मुझ दास से नाम प्राप्त करके कोई पापात्मा स्वयं गुरु बनकर ये नाम देता है वो डुप्लीकेट आदमी है, उसे बचकर रहना है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के साथ धोखा कर रहा है, वो काल के दूत का काम कर रहा है, उसे सावधान रहना है। अब काल ने कैसा जुल्म करवा रखा है हमारे साथ कि काल ने ऐसी साधना दे दी ब्रह्म ने अपने नकली गुरुओं ऋषियों महर्षियों द्वारा मंडलेश्वरों के द्वारा, और उन्होंने जो साधना की उससे प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, तो सभी ने अपना विधान बता दिया कि परमात्मा निराकार है और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझको मनुष्य रूप में मानता है, श्री कृष्ण रूप में देख रहा है, मैं कृष्ण नहीं हूं और ये मेरे घटिया अनुतम मेरे इस घटिया नियम से परिचित नहीं है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी ने, प्रत्येक मानव ने उस लोक वेद के आधार से ये फाइनल कर लिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, श्री कृष्ण जी को इष्ट रूप में मानते थे, भगवान शिव जी की विशेष आदर से पूजा करते थे और फिर भी कोई बात करता था कि ध्यान लगाता हूं मैं, कोई पूछता भी क्या देखते हो कि बस प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं, भगवान कैसा है, भगवान तो निराकार है। और विष्णु जी क्या है, फिर श्री विष्णु जी की हम मूर्ति लिए हुए हैं, उसको पूजा करते हैं, उसको भगवान इष्ट मानते हैं और फिर भी कहते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान तो निराकार है। तो ये था एक लोक वेद था। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून, प्रयत्न कर कर थक लिए, दर्शन हुए नहीं, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप रॉन्ग थी, उनकी पूजा की विधि ठीक नहीं थी, जिस कारण से परमात्मा के दर्शन हुए नहीं और सभी ने अपना एक ही सिद्धांत फाइनल कर दिया, परमात्मा निराकार है। अब काल ने ये दाव चलना था कि परमात्मा भी आ सकते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए और वो कहेंगे आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, कोई नहीं सुनेगा, उसको डले मारेंगे, पत्थर मारेंगे कि गॉड परमात्मा तो निराकार है। मुसलमान धर्म में यदि कोई ये कहता है कि परमात्मा साकार है, वो दंड का अधिकारी है। पुण्यात्माओं, ऐसे ही ईसाई धर्म में परमात्मा को साकार नहीं मानते, केवल फरिश्तों को वो मानते हैं, देवताओं को, फरिश्तों को। ऐसे ही मुसलमान धर्म में, ऐसे ही हिंदू धर्म में परमात्मा को निराकार ही रट ला रखी थी, ऐसे ही सिख धर्म में निरंकार कहें तो ही एक निरंकार, जबकि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर यहां आए, इस काल भगवान ने परमात्मा की एक बात नहीं हमें सुनने दी। ये नकली गुरु संत ऋषि महर्षि कहते रहे कि परमात्मा तो निराकार है, ये झूठ बोलता है जुलाहा और ये अपने आप को खुदा कहता है और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नासवान बताता है, देवताओं की निंदा करता है, इसकी बातें मत सुनना। हिंदू कहते ये मुसलमान है, मुसलमान कहते ये हिंदू है, इसकी बातें मत सुनना। और परमात्मा कहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में मेरा नाम कबीर और आत्म उद्धार कारणे अवगत धरा शरीर। कहते हिंदू और मुसलमान के बीच में मेरा ही नाम कबीर है और तुम्हारा कल्याण करने के लिए अवगत वो पूर्ण परमात्मा ही कबीर रूप में प्रकट है, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी और महर्षि रामानंद जी का एक सत्संग हुआ, आपस में विचार विमर्श हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई। कबीर परमेश्वर जी ने एक महर्षि रामानंद पंडित जी के शिष्य विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछा था, वो सत्संग कर रहा था। और स्वामी रामानंद जी जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे, सैकड़ों श्रद्धालु प्रेम से श्रद्धा से सत्संग सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि श्री विष्णु जी ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सबके मालिक हैं, ये ही पूजा के योग्य हैं, सर्व सुखदायी भगवान हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं और विष्णु रूप में ये सतीथि करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। अजरो अमर हैं, बड़ी बड़ी लंबी कथाएं सुनाते हैं, यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री रामचंद्र रूप में अवतरित हुए, ऐसे बहुत सी कथा सुनाई। तब परमेश्वर कबीर जी ने खड़ा होकर के प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप कहते हो कि श्री विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं है और मैंने एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, कथा सुना रहा था, मैंने उसे सुना कि श्री विष्णु जी का जन्म भगवान शिव और पार्वती से हुआ। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6-7 में आप कहते हुए अधरो अमर है, इनके कोई जन्माता पिता नहीं, कृपा शंका का समाधान कीजिए। और ये भी बताइए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब जो ही उसने शिव पुराण खोल कर देखा, उसमें प्रत्यक्ष लिखा था कि सदाशिव और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी का जन्म हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। अब सदग्रंथ संस्कृत में थे, शिव पुराण भी संस्कृत भाषा में थी, उसने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन अभिमानवश अपनी इज्जत बेइज्जती का प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। नालायका ने माननी चाहिए थी हार, स्वीकार कर लेना चाहिए था कि आप ठीक कह रहे हो बच्चा, चलो भगवान ना माने, बालकता मान ले। 5 साल की उम्र के, 5 वर्ष की आयु थी लीला में कबीर परमेश्वर की, दिखा रहे थे वो, क्योंकि वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से चलकर आते हैं, सशरीर एक बालक का रूप धारण करके प्रकट होते हैं, धीरे धीरे लीला में वो बड़े होते हैं, तो उसमें 5 वर्ष की आयु थी, लेकिन अभिमानवश माना नहीं। शिवपुराण आपको दिखाते हैं, आए है। अपने आत्माओं, ये वो सदग्रंथ है जो हजारों वर्ष पहले लिपिबद्ध है श्री वेद व्यास जी द्वारा, और ये ब्राह्मण, ये ऋषि महर्षि मंडलेश्वर इनको पढ़ते रहे, आज तक ये हमें ये क्लियर नहीं कर सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किस अतिथि में है, इनको सर्वेश्वर महेश्वर सर्वशक्तिमान बताते रहे, इनके कोई माता पिता नहीं। और श्री पहले देवी भागवत दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, हम तो नासवान हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और पूर्ण मोक्ष कराना कति आसान बात है, बिल्कुल आसान, सबसे इजी है। 2 रोटी का धंधा करना भी कठिन है, लेकिन मोक्ष बिल्कुल आसान है। कठिन क्या चीज है कि ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये हमारी सही है, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 अनुसार, उनकी न तो गति होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई सिद्धि होती है, यूजलेस। इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये परिपक्व कर दूं कि हम जो साधना करें फाइनल है। फिर तो एक ऐसा मेथड है, ऐसा खजाना दे दिया परमात्मा ने श्वास उस श्वास के स्मरण का, एक श्वास की कीमत भी इतनी जबरदस्त है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और वो कोई भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, साहूकार भी, सेठ भी, धनी भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है, रंक भी कर सकता है, और बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन हमारे ऊपर जो बाधाएं हैं, सबसे ज्यादा बाधा हमारे ऊपर ये है कि संसार जो साधनाएं कर रहा है, जो क्रियाकर्म करता है, वो शास्त्र विधि त्याग का उस लोक वेद से कर रहा है, और हमने वो करनी नहीं। यदि हम उनको करेंगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, विधि भंग हो जाएगी, हम फाउल हो जाएंगे, और फाउल होने से गेम में हम हार जाते हैं। तो हम जैसे सीता जी को एक रेखा खींच दी गई थी कि इसे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी, और रावण आया मांगने के लिए, उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, दो कदम रख के रेखा से बाहर आटा दे देती हूँ साधु को। जो ही बाहर गई तो कितना संकट परचेज कर लिया उसने, कितनी मुसीबत मोल ले ली। ऐसे ही ये काल है, परमात्मा ने जो रेखा खींच रखी है नियमों की, इसको ना तोड़ना, सपने में भी भंग ना होने देना। स्वप्न वैसे कहने का भाव ये, सपने हमसे हो भी जा कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक भगत कहता जी, मन कभी बीड़ी नहीं पी और सपने में बीड़ी पीऊं नाम लेने के बाद, तो सपने में नहीं टूटता। मैं कहने का भाव ये है कि इस मर्यादा को बहुत सावधानी से निभाना, फिर आप सफल आसानी से हो जाओगे। तो पूरा संसार समाज जो है उसी में रंग में रंगा हुआ है। हमारे एक परिवार में एक दो सदस्य उपदेशी होते हैं, बाकी के उसी रंग में होते हैं। धीरे धीरे आ जाती है गाड़ी लाइन पर समय लगता है। तो तब तक हम कभी ऐसे ही खेचातानी बन रही है, और काल का ये दाव है कि इसका नाम खंड हो जा, फिर मैं इसको अपने आप देख लूंगा। परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब परमात्मा कहते मैं इतना समर्थ हूं सारे ब्रह्मांडों की रचना मैंने की, सब कुछ मैंने रचा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक हम नियम में बंध गए। एक वचन दे चुके हैं परमात्मा इनको काल को, काल ने कहा था ब्रह्म ने कि हे प्रभु आपके ज्ञान पर आधारित रहे, आपकी मर्यादा में रहे तो आपका, आपकी मर्यादा में ना रहे तो फिर वो हमारा होगा। तो परमेश्वर कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना, जब तक हमारी मर्यादा में भक्त रहेगा, संत रहेगा, मेरा साधक रहेगा हमारी आन कान में मर्यादा में, तो काल का अटैक नहीं हो सकता। तो काल सबसे पहले यही काम करता है कि उसके नाम को खंडित करवाने की चेष्टा करता है। फिर जैसे कनेक्शन कट गया, अपना बिजली का कनेक्शन ले रखे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, कूलर भी चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, और जो कनेक्शन कट गया किसी भी कारण से तो सब सुविधाएं ठप हो जाएंगी। इसी प्रकार परमात्मा का एक बार आपसे नाम खंड हो गया तो परमात्मा की पावर नहीं आएगी आपके पास, आपके कार्य नहीं बनेंगे। और काल ये पूरा कोशिश करता है, लेकिन आप वही बात है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु के वचन का पालन अवश्य करना पड़ेगा जब भक्ति चाहते हो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा का पाना सबसे आसान, और नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, सभी सदग्रंथ यही बता रहे हैं। गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और सब समय में मेरा स्मरण भी कर। यही सूक्ष्म वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, जब भी दाव लगे जब पांचा स्मरण कर जा, और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमन रख दे और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक पास्यंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरन के, बन गए ना सेठ तुम तो। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं, जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम सौ सौ अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका यह है कि पूरा परिवार नाम ले ले, रिश्तेदारों से भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें, हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है, मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपके समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है, और उस समझ को मैं लाने के लिए इतना प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सदगुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुणात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तो बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना, कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होगी यहां से, ये तो डेफिनेट है, चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रो या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई,